सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने, सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस है और आचार्य महाराज की श्री कृपा से मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति का अवसर भी मिला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज इस युग के महान आचार्य हुए हैं। उनके जैसी त्याग तपस्या और करुणा विरले ही साधुओं में होती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को सन 1872 में हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने 84 वर्ष के जीवन काल में 57 वर्ष तक अन्न का त्याग किया था। 57 वर्ष उन्होंने अन्न आहार के रूप में ग्रहण नहीं किया। 36 वर्ष की मुनि अवस्था में, उस 36 वर्ष के मुनि जीवन के काल में 25 वर्ष 9 माह उपवास में व्यतीत हुए। 9998 उपवास उन्होंने अपने पूरे 36 वर्ष के मुनि जीवन में किए। जीवन के अंत में 36 दिन संलेखना में व्यतीत हुए और सन 1955 में 18 सितंबर को वे संलेखना पूर्वक और समाधि मरण को प्राप्त हुए। उनके अपने जीवन के सैकड़ों संस्मरण हैं। आज अगर मुनि परंपरा सुचारू रूप से सारे देश में चल रही है तो उसका श्रेय चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को जाता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के ही शिष्य परम पूजाचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज के शिष्य परम पूजाचार्य शिव सागर जी महाराज और परम पूजाचार्य शिव सागर जी महाराज के शिष्य परम पूजाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज के इस वर्तमान युग में उसी परंपरा को की कीर्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की तपस्या के बारे में सर्वविदित है कि सर्प का और सिंह का उपसर्ग होने पर भी वे अविचल रहे। तपस्या ऐसी कि बहुत समय तक दोपहर में सामायिक के समय बैठ रहे थे। वो घटना आचार्य महाराज ने हमें सुनाई थी कि एक तरफ करुणा है, दूसरी तरफ तपस्या की कठोरता है। दोनों का समन्वय बहुत विरले ही जीवों के होता है। 12 बजे दोपहर की सामायिक में बैठने से पहले देखा तो मंदिर के ऊपर पट्टी पर किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, जिसमें से चिड़िया का छोटा सा बच्चा नीचे आकर के गिर गया। महाराज अपनी सामायिक में लीन नहीं हुए थे, इसलिए सामायिक स्थगित कर दी और चुपचाप उस बच्चे को देखते हुए बैठे रहे कि कोई बिल्ली इत्यादि आकर उसे नष्ट ना कर दे। 12:30 बजे तक वे बैठे रहे। जब शावक आए तब उनको इशारा करके उसे सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया, फिर अपनी सामायिक में लीन हो गए। और सामायिक में लीन होने के घंटे भर बाद सर्प का उपसर्ग हुआ, जो 2.5 घंटे तक उनके शरीर से लिपटा रहा, पर वे अविचल शांत भाव से ध्यानस्थ बने रहे। एक तरफ अपार करुणा, दूसरी तरफ अपने तपस्या की दृढ़ता। ऐसी महान विभूति का आज समाधि दिवस अपन सब यहाँ पर मना रहे हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लें। आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि सम्यक दर्शन तो पशु पर्याय में और नार की जीव के भी हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में महाव्रत तो मात्र मनुष्य पर्याय में ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए भाई भीरु नका संयम धरा, इसलिए संयम से मत डरो, संयम जरूर से धारण करो। आज का दिन हमें संयम धारण करने की प्रेरणा देता है। उनका अपना जीवन इतना संयमित और अनुशासित था कि एक बार समाज के कहने से और उन्होंने अपने चित्र खिंचवाने की परमिशन दे दी। पहले के जमाने में आज के जैसे जल्दी से फोटो तो खिंचता नहीं था, बड़ी सी मशीन आती थी, पर्दा ढक करके फिर उसमें से फोटोग्राफर फोटो खींचता था। उस पूरी प्रक्रिया में फोटोग्राफर के द्वारा महाराज को कई बार कहा गया कि महाराज थोड़े ऐसे बैठें, थोड़े ऐसे करें, तो चुपचाप चूंकि वचन दे दिया था इसलिए वैसा करते रहे। लेकिन उसके बाद एक सप्ताह तक दूध का त्याग कर दिया। उस समय मात्र दूध और चावल ही लेते थे, सो उसमें से भी दूध का त्याग कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले मुझे पराधीनता का अनुभव हुआ, पर मैं वचनबद्ध था, इसलिए मैं उस पराधीनता से मुक्त होने के लिए और दूध का त्याग करता हूं। त्याग ही मेरे लिए पराधीनता से मुक्त करेगा। त्याग के प्रति उनकी इतनी अधिक सावधानी और रुचि थी, उनकी अपनी सामर्थ्य के बारे में इतनी घटनाएं हैं, कभी पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा। जैसे रत्नकरंडक शावकाचार हर शावक को अपने घर रखना चाहिए, ऐसे ही चारित्र चक्रवर्ती पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर के द्वारा लिखी गई आचार्य शांति सागर जी महाराज की जीवनी, वह भी अवश्य अपने पास रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को और स्वयं भी हमें बताना चाहिए कि हम किस तपस्वी जनों के उत्तराधिकारी हैं, हमें कितनी तपस्या के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन के कल्याण के मार्ग को अंगीकार किया है और हमें प्रेरणा देके गए हैं, उनका स्मरण करना भी हमारा अपना सौभाग्य मान करके हमें पढ़ना चाहिए। उनके बारे में कहते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं। फल्टन में किसी के घर में तलकचंद देवचंद गांधी थे, नाम भी है, 10 वर्ष का बालक था, सर्प ने काटा और उन्होंने लाकर के महाराज के चरणों में रखा। महाराज के मुंह से निकला ठीक हो जाएगा, और अगले ही क्षण इतना शब्द सुनते ही और वह जैसे सोए हुए से जागता है, निर्विस होकर के उठ के खड़ा हो गया। नसलापुर में कुष्ठ रोग से ग्रसित था, महाराज ने कहा कि 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लो, ठीक हो जाओगे, और वास्तव में 6 महीने के ब्रह्मचर्य व्रत के उपरांत उस वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। महाराज पर चींटी का इतना भयंकर उपसर्ग हुआ कि सारे शरीर को चीटियां चिपक गईं और जगह जगह से रक्त की धारा भी बह गई, लेकिन वे अडिग रहे, बालकवत निश्चल रहे। और सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी विनय। तपस्वी को अहंकार आने में देर नहीं लगती, लेकिन तपस्या के साथ साथ विनय इतनी थी कि जब भी कोई उनकी तपस्या की प्रशंसा करता था तो कहते थे, भाई मैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज में सबसे छोटा हूं, मेरा तो अंतिम नंबर है। ऐसा बड़े विनय से कहते थे। सेवा की भावना इतनी थी कि ब्रह्मचारी फतेह चंद जी थे नागपुर वाले, वो एक बार अस्तस्थ हुए तो बड़े घबराए, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सिर पे हाथ रख के कहा कि कोई सेवा नहीं करेगा तो मैं तो हूं, तुम घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। एक सामान्य से व्यक्ति के लिए भी उनके मन में इतनी करुणा, इतना विनय मोक्ष मार्ग के प्रति, और अपनी तपस्या में इतने अडिग आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से हम प्रेरणा लें और स्वयं भी संयम, तपस्या, विनय और करुणा के मार्ग को अपनाएं। आचार्य महाराज की कृपा से आज ही के दिन मुझे भी रत्नत्रय को धारण करने की आज्ञा मिली। मेरी अपनी सामर्थ तो उतनी नहीं है जितनी कि एक महाव्रत को धारण करने वाले की होनी चाहिए, लेकिन श्री गुरु की कृपा से मैं जहां जिस तरह से हूं उसको उन्हीं की कृपा मानता हूं। मेरे अपने जीवन की उपलब्धि एक ही है कि मुझे श्री गुरु के चरणों में स्थान मिला। मैं इसके अलावा बाकी उपलब्धियों का श्रेय श्री गुरु को ही देता हूं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना ही उपलब्धि के नाम पर है कि मेरी जगह उनके चरणों में बनी रहे, इसी के लिए मैं प्रयत्न करता हूं। और बाकी सब चीजें तो आती और चली जाती हैं, उनसे संसार ही बढ़ता है, लेकिन श्री गुरु के चरणों में अगर जगह बनी रही तो इस संसार से पार होने का मार्ग खुला रहेगा। इसी भावना के साथ कि मैं उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर सकूं, श्रावक जनों की सद्भावनाएं और शुभकामनाएं भी मेरे इस मोक्ष मार्ग में सहयोगी हैं, ये मैं हमेशा अनुभव करता हूं। सब लोग बहुत भावना भाते हैं कि महाराज स्वस्थ रहें, और वास्तव में सबकी भावना से ही आज मुझे वो क्षण याद आ गए। सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन शाहपुर वालों ने जिस तरह से मेरी सेवा की थी वो मैं भूलूंगा नहीं। सब बैठे हुए हैं, वो सब आए हैं, और आप सब भी जो सेवा की भावना रखते हैं उसके लिए भी मैं आपका उपकार मानता हूं। आप अपना कल्याण तो करेंगे ही, मेरे मोक्ष मार्ग में भी आप सहयोगी बनते हैं। ऐसे ही सबके साधु जनों के मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनते रहें, क्योंकि श्रावक और साधु दोनों के द्वारा ही ये मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। हम सब इस मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर और भगवान महावीर स्वामी की इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुखदर्शक यह
स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का साचा ऋगुपरुषम करने वाला है। जब जग विषया में रच पच को शिव के निश्चित पथ में चिंतन करते हो करते तप शैल नदी तट पर तरु तलता की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में अंतर जाती मानो झड़ती हूँ फूल झड़िया भवंधन पर टूट पड़े खिल जाए अंतर की कलिया तुम सादानी क्या कोई हो जग को देवी जग की विधिया दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मैया हे मन देव तुम्हें प्रणाम प्रणाम हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम
देखो ज्ञान के प्रकाश देखो
जहाँ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को सतर पिछान वे को परम प्रमाणी है
अनुभव ताए वे को जीवों के जताए वे को भावना सताए वे को भवानी है
जहाँ तहाँ पार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है नाम से सुझे लो कालो सुवाणी मस्तक धरो सदा रहो उदक चंदन तंडुल पुष्प तई चरु सुदी पशु धूप फलार्घ कई जिन गहे मुनिराज महंगे ओम ह्रीम परम पूज्याचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के समस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पुनीत पावन चरणारविंद को अमर जीवन प्राप्त है अरहंत निर्वाणी की
हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने
बोले भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
हम जिस देश में पैदा हुए हैं वो भारतवर्ष अत्यंत संस्कारवान संस्कृति प्रधान और संस्कृत भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला देश है हमें इस बात का गौरव होना चाहिए सभ्यता और संस्कृति में बहुत अंतर है संस्कृति अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ भारत में है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभ्यता सब देशों में है। संस्कृति अगर ना हो तो पशु और मनुष्य के विचारों में भेद नहीं रहेगा, और अगर सभ्यता ना हो तो पशु और मनुष्य के रहन सहन में अंतर नहीं रहेगा। हमारे उठने बैठने बोलने चालने इन सब में सभ्यता जरूरी है, लेकिन हमारे उत्थान पतन के विचारों को देने वाली संस्कृति है। हम सब उसी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अगर कोई अभियान चलाते हैं तो वो प्रशंसनीय और अनुकरणीय है, जबकि आज के समय में हम पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप ही अपनी संस्कृति को बालाए ताक रख करके और अपनाते चले जा रहे हैं। आज हम उन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं जहां हमें नमस्कार की जगह पर क्रॉस बनाना सिखाया जाता है, हाथ जोड़ना नहीं सिखाया जाता। हमें आने वाले समय में और उन्हीं विद्यालयों का चयन करना चाहिए अपने बच्चों के लिए जो विनय, हाथ जोड़ करके विनय की जाती है, भारतीय संस्कृति सिखा सकें, जो बच्चों को एक सोच दे सकें कि वे अपने उत्थान और पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें अपने उत्थान का विचार लाना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन सब ने जो विचारों का आदान प्रदान था उसके लिए दो ही भाषाएं चुनी, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। प्राकृत भाषा के मायने हैं बोलचाल की भाषा, और संस्कृत जो कि हमारे संस्कारवान लोगों के द्वारा बोली जाने वाली देव भाषा कहलाती है। संस्कारवान को हम देव कहते हैं जिसके भीतर देवत्व है। हम तो प्रकृति में जैसे आते हैं सो वो तो रॉ मटेरियल की तरह है। हमारे माता पिता जैसी उनके अंदर विचार की प्रक्रिया होती है, जैसी उनकी संस्कृति होती है, उसके अनुरूप हमें परिष्कृत और परिवर्धित करते हैं। वो जो परिष्कृत और परिवर्धित करना है वही संस्कृति है। तो अगर ये दोनों चीजें हमारे ध्यान में रहें कि हमें अपनी भाषा जो हमारे संस्कारों को प्रदर्शित करती है उस संस्कृत भाषा को हमें सीखना चाहिए। मुझे बहुत पहले की एक घटना मालूम है कि कोई व्यक्ति मरण के समय और पानी को आओ कहते हैं, आओ पंजाब जैसे बना, और वो आखिरी समय प्यास के मारे जब कहता था कि आओ आओ तो लोग समझते थे कि बुला रहा है सो आ जाओ, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वो पानी चाहता है। कभी कभी हमारी अपनी भाषा भी हमारे प्राणों की रक्षा में कारण बनती है, ये हम ध्यान रखें। इसलिए अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए, और जो अपनी भाषा को भूल जाते हैं, सब भाषाओं का ज्ञान होना बुरा नहीं है। आप अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी सीखें जितनी आप संस्कृत जानते हैं या हिंदी जानते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं लेकिन अपने जिस देश में हम रहते हैं उस मातृभाषा को ही भूल जाएं। आप अंग्रेजी बोलकर सब हो सकते हैं लेकिन संस्कारवान नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें। सब होना भी जरूरी है, लेकिन कोई व्यक्ति समाज के बीच अगर सब ना हो तो उसे समाज पसंद नहीं करती। इसलिए सभ्यता तो जरूरी है। सभ्यता के मायने ये है कि समाज में उठने बैठने लायक हमारा व्यवहार हो, लेकिन घर में हमारा व्यवहार कैसा हो ये कौन निर्धारित करेगा? ये संस्कृति निर्धारित करती है। समाज में कैसा व्यवहार हो ये सभ्यता का काम है कि सब होना चाहिए तो ही समाज निर्वाह कर पाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति समाज में तो बहुत सब हो सकता है, लेकिन अपने परिवारजनों के प्रति कैसा व्यवहार करता है इससे मालूम पड़ेगा कि उसकी संस्कृति क्या है। वो सिर्फ अपने भोग विलास के साधन की तरह अपने परिवारजनों का उपयोग करता है या कि उनके आत्म उत्थान में सहायक बनता है, ये उसका विचार उसकी संस्कृति का सूचक है। घर में हम अपने परिवारजनों के साथ अच्छा व्यवहार न करें तो हम संस्कारवान नहीं कहलाएंगे, भले ही हम समाज में और बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल के, बहुत अच्छे कपड़े पहन करके और बहुत सब दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अपने परिवारजनों के प्रति हमारा व्यवहार वो हमारे संस्कारों में आता है कि माता पिता कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, बेटा तो बेटा ही रहेगा और उसका दायित्व है कि वो उनकी सेवा करे। ये संस्कृति है। ये संस्कृति नहीं है कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो उन्हें अनाथालय भेज दिया जाए, उनकी परवरिश करने का दायित्व हमारा नहीं है। फैमिली का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान है फैमिली का, उसमें तो माता पिता और उनके 18 साल से छोटे बच्चे, इसी का नाम है फैमिली। उसमें नाना चाचा ताऊ इन सब का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये भारत की संस्कृति है कि हमारे यहां तो एक गाय भी अगर घर में पाली जाएगी तो वो भी घर के एक सदस्य की तरह मानी जाएगी। उसके भी जन्म और मरण में हम वैसा ही सूतक पातक मानेंगे जैसा कि अपने परिवारजनों के जन्म मरण में सूतक पातक मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति में एक और विशेषता है कि जो भले बुरे का विचार रखती है वो संस्कृति है। किसमें हमारा और सबका भला है, किसमें हमारा और दूसरे का अहित है, ये विचार सब लोगों के पास नहीं होता, ये ध्यान रखना। संस्कारवान के पास ये विचार होता है। तो हमें अपने भले बुरे और दूसरे के भी भले बुरे का ज्ञान देने वाली हमारी संस्कृति है। हमारी भाषा भी हमें यही ज्ञान देती है कि हम प्राणी मात्र की भलाई करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा कि जब वो एक सिनेमा में फिल्म देखने गए तो वहां देखा कि जब जब भी वहां पर बुराई और भलाई के बीच युद्ध होता था, कभी ईमानदार आदमी जीतता था तो सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता था, और जब उस चित्र में उस सिनेमा में कभी किसी बेईमान आदमी की जीत होती थी तो सारे हॉल में सन्नाटा खिंच जाता था। तो उन्होंने लिखा कि मुझे उस समय बहुत गौरव होता था कि यह मेरा भारत देश है जहां की भले ही कोई बुरा हो लेकिन फिर भी वो भलाई को ही ठीक मानेगा। और वहीं उनके साथ ये घटना घटित हुई कि जब इंटरवल में और किसी ने थोड़ी सी रोशनी करी तो उसमें जो उनके बाजू में व्यक्ति बैठा था जो कि भलाई की जीत होने पर ताली बजाता था और बुराई की जीत होने पर वो भी चुप बैठ जाता था, वो उस शहर का सबसे बदमाश व्यक्ति था। जिसको कि लोग सबसे बुरा मानते थे वो व्यक्ति भी उस सिनेमा में, और जब भलाई की जीत होती थी तो वो भी ताली बजाता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये है हमारी संस्कृति। सब होने के नाते तो ये है कि ताली बजाओ, जब सब लोग बजाएं तो अपन भी बजाओ, जब सब लोग चुप हो जाएं तो अपन भी चुप हो जाओ। नहीं, लेकिन संस्कृति ये सिखाती है कि किस चीज का सम्मान करना, किस चीज की प्रशंसा करना,
थोड़ी सी बात बच्चों से भी करनी है। ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए कर ली मैंने, मैं भूल ही गया, क्योंकि बच्चों को तो आपने कहां अपने बीच में घुसा घुसा के बिठा दिया। मैं तो ये सोच के आया था वहां से, सचमुच मुझे बड़ा डिसिप्लिन लगता है, ये सब जिनको कि मैं रोज सुनाता हूं फिर भी ज्यों के त्यों कोई फर्क नहीं, वो आगे आगे बैठे, सहायक बनता है ये, उसका विचार उसकी संस्कृति का सूचक है। घर में हम अपने परिवारजनों के साथ अच्छा व्यवहार न करें तो हम संस्कारवान नहीं कहलाएंगे, भले ही हम समाज में और बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल के, बहुत अच्छे कपड़े पहन करके और बहुत सब दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अपने परिवारजनों के प्रति हमारा व्यवहार, वो हमारे संस्कारों में आता है कि माता पिता कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, बेटा तो बेटा ही रहेगा और उसका दायित्व है कि वो उनकी सेवा करे। ये संस्कृति है, ये संस्कृति नहीं है कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो उन्हें अनाथालय भेज दिया जाए, उनकी परवरिश करने का दायित्व हमारा नहीं है। फैमिली का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान है फैमिली का, उसमें तो माता पिता और उनके 18 साल से छोटे बच्चे, इसी का नाम है फैमिली, उसमें नाना चाचा ताऊ इन सब का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये भारत की संस्कृति है कि हमारे यहां तो एक गाय भी अगर घर में पाली जाएगी तो वो भी घर के एक सदस्य की तरह मानी जाएगी, उसके भी जन्म और मरण में हम वैसा ही सूतक पातक मानेंगे जैसा कि अपने परिवारजनों के जन्म मरण में सूतक पातक मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति में एक और विशेषता है कि जो भले बुरे का विचार रखती है वो संस्कृति है। किसमें हमारा और सबका भला है, किसमें हमारा और दूसरे का अहित है, ये विचार सब लोगों के पास नहीं होता, ये ध्यान रखना। संस्कारवान के पास ये विचार होता है। तो हमें अपने भले बुरे और दूसरे के भी भले बुरे का ज्ञान देने वाली हमारी संस्कृति है। हमारी भाषा भी हमें यही ज्ञान देती है कि हम प्राणी मात्र की भलाई करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा कि जब वो एक सिनेमा में फिल्म देखने गए तो वहां देखा कि जब जब भी वहां पर बुराई और भलाई के बीच युद्ध होता था, कभी ईमानदार आदमी जीतता था तो सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता था, और जब उस चित्र में उस सिनेमा में कभी किसी बेईमान आदमी की जीत होती थी तो सारे हॉल में सन्नाटा खिंच जाता था। तो उन्होंने लिखा कि मुझे उस समय बहुत गौरव होता था कि यह मेरा भारत देश है जहां की भले ही कोई बुरा हो लेकिन फिर भी वो भलाई को ही ठीक मानेगा। और वहीं उनके साथ ये घटना घटित हुई कि जब इंटरवल में और किसी ने थोड़ी सी रोशनी करी तो उसमें जो उनके बाजू में व्यक्ति बैठा था जो कि भलाई की जीत होने पर ताली बजाता था और बुराई की जीत होने पर वो भी चुप बैठ जाता था, वो उस शहर का सबसे बदमाश व्यक्ति था, जिसको कि लोग सबसे बुरा मानते थे वो व्यक्ति भी उस सिनेमा में, और जब भलाई की जीत होती थी तो वो भी ताली बजाता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये है हमारी संस्कृति, सब होने के नाते तो ये है कि ताली बजाओ, जब सब लोग बजाएं तो अपन भी बजाओ, जब सब लोग चुप हो जाएं तो अपन भी चुप हो जाओ। नहीं, लेकिन संस्कृति ये सिखाती है कि किस चीज का सम्मान करना, किस चीज की प्रशंसा करना। थोड़ी सी बात बच्चों से भी करनी, ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए कर ली मैंने, मैं भूल ही गया, क्योंकि बच्चों को तो आपने कहां अपने बीच में घुसा घुसा के बिठा दिया। मैं तो ये सोच के आया था वहां से, सचमुच मुझे बड़ा डिसिप्लिन लगता है, ये सब जिनको कि मैं रोज सुनाता हूं फिर भी ज्यों के त्यों कोई फर्क नहीं, वो आगे आगे बैठे, और जिनको कि मैं सोच रहा था कि बिल्कुल बढ़िया से ड्रेस लगाए हुए और मेरे सामने बिल्कुल पूरे वही वही बच्चे बच्चे रहेंगे, ये सब तो आजू बाजू रहेंगे, लेकिन इन सब ने पहले ही से जगह कैप्चर करके रख ली, उनके लिए छोड़ी नहीं, छोटे बच्चों के लिए करना चाहिए अपने को कि हम उनके लिए भी, हमारे पास समय होना चाहिए उनके लिए भी, हम क्या दे सकते हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अपनी संस्कृति में जो जो श्रेष्ठ चीजें हैं। बच्चों, जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीज है जो कि श्री कृष्ण ने भी वरदान के रूप में चाही थी कि मातृ मुखेन विद्या, मातृ हस्तेन भोजनम, मुझे दो चीजें प्राप्त हो, मां के हाथ का भोजन और मां के मुख से प्राप्त होने वाली विद्या। जिसके पास ये दोनों चीजें हैं वो अत्यंत संस्कारवान है, वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है। और आज कहां हमें मां के हाथ का भोजन मिलता है, हमें तो चाहे जिसके हाथ का भोजन करने की आदत पड़ गई है, और मां के मुख से मुद विद्या, एक शिक्षक के तीन गुणों में उसका प्रज्ञावान होना, चरित्रवान होना और मां के समान करुणावान होना, ये तीन चीजें शामिल की गई, इसीलिए की गई हैं भारतीय संस्कृति में कि वो मां के समान करुणावान भी हो शिक्षक, तो ही उसके द्वारा दी गई शिक्षा आने वाली पीढ़ी को समृद्ध और सुखी बना सके। इसलिए बच्चों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, वे हमें मां के समान हैं। चारित्रवान भी होना चाहिए और ज्ञानवान तो है ही, उसमें लिखा कि चारित्रवान तो साधु के समान हो और ज्ञानवान विद्वान के समान हो और करुणावान मां के समान हो। ये एक शिक्षक के भीतर तीन अगर क्वालिटी हैं तो उस देश में आने वाली पीढ़ी अत्यंत संस्कारवान होगी, ज्ञानवान तो होगी होगी लेकिन संस्कारवान भी। और एक और बच्चों के लिए कहता हूं, बच्चों पूछता हूं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं ना, मैं तुमसे पूछता हूं कि जो दूसरे को मारपीट करता है क्या उसे अपन अच्छा मानते हैं? नहीं मानेंगे। जो दूसरे से झूठ बोलता है उसे अच्छा मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। जो चोरी करता है, हमारे पेंसिल वेंसिल चुरा लेता है, बस्ती में से किताब चुरा लेता है, घर में से पैसे चुराता है, उसको अच्छा मानते हैं क्या? नहीं मानते। जो हमारे लिए बुरी नजर से देखता है उसको अच्छा मानते हैं क्या? जो अपने पास सब जोड़ जोड़ के रखता है, मौका आने पर किसी को नहीं देता, उसको अच्छा मानते हैं क्या? तो फिर किसको अच्छा मानते हैं? जो सबसे प्यार करता है, जो झूठ नहीं बोलता सच बोलता है, जो सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखता है और जो सबके काम आता है। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। हम अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृत भाषा को, जो कि उस संस्कृति को बताने वाली है, जितना भी मेन स्क्रिप्ट है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, और चाहे सिद्धांत ग्रंथ हो, चाहे आगम हो, वो अधिकांश संस्कृत भाषा में है। जैन आगम संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है। बाकी जो वैदिक संस्कृति का साहित्य है वो सब संस्कृत भाषा में है, जो कि हमें संस्कारवान बनाने के लिए है। हमारी परंपरा तमसो मां ज्योतिर्गमय की है। इसलिए हम अपने जीवन को प्रकाशवान बनाएं और अंधकार से जो हमारे भीतर पड़ा हुआ है उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं या दो सुना देता हूं, ठीक है? वैसे मैं सोच रहा था एक ही से काम चलेगा, नहीं, लेकिन अब दो सुनाता हूं। एक तो बापू के जीवन की और एक गुरुजी के जीवन की। एक गुरुजी थे, वो पढ़ाते थे बच्चों को। अब इतने इतने सारे बच्चे तो उस समय नहीं पढ़ते थे जितने आप पढ़ते हैं, पहले तो थोड़े से बच्चे रहते थे। और फिर गुरुजी भी गुरुकुल में पढ़ाते थे, वहीं पर उनको खाना पीना है, वहीं गुरुजी के साथ रहना है, ऐसा पहले विद्या अध्ययन का ढंग था। तो तीन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, उनको जो भी शिक्षा देनी थी, जो भी ज्ञान देना था, जो भी संस्कार देना थे, वो सब दे दिए। गुरुजी ने कहा कि अब परीक्षा लेंगे। अब तो सबसे ज्यादा ध्यान लिखित परीक्षा पर होता है। पहले परीक्षा ली जाती थी तो
प्रयोग के रूप में ली जाती थी। अभी भी होता है, बच्चों प्रयोग तो करवाते हैं प्रयोगशाला में ना, लेबोरेटरी में, थोड़े बड़े बच्चों को करवाते हैं, छोटे बच्चों को तो ड्राइंग ड्राइंग करवाएंगे या कि कुछ भी बनवाएंगे उनसे ना, वो क्या क्या बनाते हैं आप, नहीं बनाते मिट्टी के बना के ले जाते हैं, चटाई बटाई अब बना के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, हम तो ले जाते थे उस समय, पहले वो चटाई बना के ले जाते थे कागज की बना करके, आपको याद है। ये कंस्ट्रक्शन हमारी संस्कृति डिस्ट्रक्शन की नहीं है, हमारी संस्कृति मिटाने की नहीं है, हमारी संस्कृति बनाने की है। बचपन से ये चीजें सिखाई जाती। अब क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तो कैसे लेंगे गुरुजी, कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने विद्यालय से और खेत पर आना है, खेत में मैं मिलूंगा, वहीं पर काम करते थे गुरुजी खेत में, ठीक है आ जाएंगे। अब तीनों जन चले, तीन बच्चे थे, तो देखा तो रास्ते में ढेर सारे कांटे पड़े थे। अब क्या करें, पहले वाले ने सोचा कि भैया अगर कांटे पड़े हैं तो देर लग जाएगी इनको हटाने में, तो उसने क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग जंप बोलते ना, कूद गए बहुत, तो दौड़ करके वो कूद करके वो निकल गया और जल्दी से पहुंच गया। दूसरे वाले ने सोचा कि अगर कूदे और उतनी लंबी कूद नहीं हुई और बीच में गिरे तो और उपद्रव खड़ा हो जाएगा, अब भी काटे वाटे लग जाएंगे, तो उसने सोचा कि अपन थोड़ा देर लगेगी, पर एक बाजू में से पगडंडी का रास्ता था जिससे घूम करके फिर से रोड पे आया जा सकता था, वो उससे आ गया। तीसरे वाले ने भी विचार किया कि ऐसे कैसे, मैं बच के निकल जाऊंगा लेकिन मेरे पीछे कोई आएगा और उसे कांटे लग जाएंगे, और उसने सब कांटे रास्ते के बीन बीन करके एक तरफ कर दिए, रास्ता साफ हो गया, फिर वो निकल करके गुरुजी के पास पहुंचा। तो ये तो तय था, उसको बहुत सारी देर लग गई ना, और बाकी दो बच्चे तो पहले पहुंच गए। गुरुजी ने पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए, तो तीनों जन ने अपने अपने बारे में जानकारी दी, और आखिरी वाले बच्चे ने कहा कि क्या करें गुरुजी, देर हो गई और कांटे बहुत पड़े थे, मुझे नहीं लगते, किसी और को लग सकते थे, इसलिए मैंने सब कांटे अलग कर दिए, इसलिए मुझे देर हो गई। अच्छा बच्चों बताओ, गुरुजी ने तीनों में से किसको पास किया होगा? अरे वाह, क्यों किया होगा? क्योंकि उसने सबके भलाई का काम किया। ये क्या चीज है? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे भारत देश की संस्कृति है कि हम जो भी काम करें वो सबकी भलाई का करें। और एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊं गांधी जी का, क्या हुआ, गांधी जी तो बहुत पंक्चुअल थे, मतलब समय के बड़े पाबंद थे।
अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का,
अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का,
बामा देवी का जाया है बैरागी बचपन का,
बामा देवी का जाया है बैरागी बचपन का,
सुन प्यारे जोगी तुझे भी बनाएगा पारस भजले, तू परम रस पाएगा पारस भजले। नेमिनाथ और महावीर के बीचों बीच विराजे,
नेमिनाथ और महावीर के बीचों बीच विराजे,
अहि क्षेत्र का केवली समेत शिखर भजले अग्निकुंड से नागर नागिन जलते हुए बचाए
अग्निकुंड से नागर नागिन जलते हुए बचाए
पद्मावती धरणेन्द्र बने उपसर्ग में वे काम आए भजले पाछूटे रस रह जाए राछूटे आए पास छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास
छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास
सुन प्यारे अक्षर अक्षर काम आएगा पारस भजले तू परम रस पाएगा पारस भजले श्रावण शुक्ला सब को मोक्ष हुआ सुखदाई
श्यामल शुक्ला सप्तमी को मोक्ष हुआ सुखदाई
श्याम वर्ण को श्याम घटाओं ने दी सरस विदाई
श्याम वर्ण को श्याम घटाओं ने दी सरस विदाई
सुन प्यारे मोक्ष तुझे भी दिलाएगा पारस भजले तू परम रस पाएगा पारस भजले
कंकर बन गया मोती पत्थर पत्थर धन्य हुआ
कंकर कंकर बन गया मोती पत्थर पत्थर धन्य हुआ
अरहंतों के चरण चूम कर जल पर्वत चैतन्य हुआ केवलियों की जिन वाणी से मुखरित गहन अरण्य हुआ
बलियों की जिनवाणी से उत्कृत गहन अरण्य हुआ
अरिहंतों के चरण चूम कर जड़ पर्वत चैतन्य हुआ
अरिहंतों के चरण चूम कर जड़ पर्वत चैतन्य हुआ पार्श्वनाथ जय पार्श्वनाथ जय पार्श्वनाथ जय
पार्श्वनाथ चौबीसों में बीस जिनेश्वर मुक्त हुए यहाँ ध्यान लगा कर जन को जिना
किसने जिन घर मुनि घर वाला मेरे घर नहीं कोई अन्य दुआ
अरे हंतों के चरण चूम कर जड़ पर्वत चैतन्य हुआ
अरे हंतों के चरण चूम कर जड़ पर्वत चैतन्य हुआ
की जिन वाणी से विकरित गहन अरण्य हुआ
पर जड़ पर्वत चैतन्य हुआ।
क्षेत्र में पारस पारस, नागेश्वर में पारस पारस, संखेश्वर में पारस पारस, अंतरिक्ष मक्षी में पारस, विघ्नेश्वर में पारस पारस, पारस है चारों ओर। जय हो बामा किशोर,
जय हो बामा किशोर।
संकट मोचन पारस पारस, भवजल तारण पारस पारस, सुरगण बोले पारस पारस, मुनिजन बोले पारस पारस, प्रिय कार प्रिय दर्शन पारस, भक्तों का आकर्षण पारस, वो चंद्र हम चकोर। जय हो वामा किशोर,
जय हो वामा किशोर, जय हो वामा किशोर।
तन पर छाई ऐसी छटा, जैसे हो सावन की घटा, तेजमय ब्रह्मचारी, बाल यति सुखकारी, महिमा प्रभु की भारी हो।
तन पर छाई ऐसी छटा, जैसे हो सावन की घटा,
हो पद्मावती धरणेन्द्र के इष्ट की दया का और न छो। काशी में है पारस पारस, अहि क्षेत्र में पारस पारस, नागेश्वर में पारस पारस, संखेश्वर में पारस पारस, अंतरिक्ष मक्षी में पारस, विघ्नेश्वर में पारस पारस, पारस है चारों ओर। जय हो बामा किशोर,
जय हो बामा किशोर।
सदन जाके भक्तों की खबर पाके, बैठा है तीर्थों में आके हो।
ना कोड़ा जो बंधन करे, जन का उसे ना कोड़ा पड़े,
हो शिखर का पारस देख हमारा, नाच उठे मन मोर। जय हो वामा किशोर,
जय हो वामा किशोर।
संकट मोचन पारस पारस, भवजल तारण पारस पारस, सुरगण बोले पारस पारस, मुनिजन बोले पारस पारस, प्रिय कारण प्रिय दर्शन पारस, भक्तों का आकर्षण पारस, ओ चंद्र हम चको। जय हो वामा किशोर,
जय हो वामा किशोर।
कचनेर वाला बाबा, कचनेर वाला, चिंतामणि पारस को कोई कहियो न काला, बाबा कचनेर वाला। बड़े गांव का बाबा बड़ा, हर संकट में से प्रकट हुआ, जो इसके निकट हुआ, काम उसका झट हुआ हो।
बड़े गांव का बाबा बड़ा, हर संकट में